ऑस्ट्रेलिया में दुर्घटनावश ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों की संख्या क्राइसिस पॉइंट पर पहुंच गई है। इस वक्त कार एक्सीडेंट से ज्यादा मामले ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौत के होने वाले हैं, और एक राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार शहर में रहने वाले नवयुवकों की तुलना में क्षेत्रीय और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पुरुष सबसे ज्यादा रिस्क में हैं। जहां प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एक इलाज होता है, लेकिन नई रिपोर्ट के अनुसार गैरकानूनी ड्रग्स की तुलना में ज्यादा लोग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के ओवरडोज से मरते हैं। ड्रग रिसर्च ग्रुप द पेनिंगटन इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में 2014 तक के 10 सालों में ओवरडोज से दुर्घटनावश मृत्यु की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इंस्टीट्यूट के सीईओ जॉन रायन के अनुसार ज्यादातर मौत 30 से 59 वर्षीय पुरुषों की हुई हैं, और ज्यादातर मामलों में ऑक्सीकोडोन और एंजियोडाइजापिन्स दवाई मौत का कारण बनी।
I think this is a crisis. We've seen a 61% increase in the last 10 years in fatal overdoses. There's a lot of people that don't die from overdose, but they're permanently injured. So we're really dealing with something that's preventable, that doesn't need to happen, is happening increasingly, and the grief and loss that families experience is really something that we don't talk about nearly enough.
आंकड़ों के अनुसार जल्द ही देश भर में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या से ज्यादा ओवरडोज से मरने वालों की संख्या हो जाएगी। श्री रायन कहते हैं, जब लोग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ले रहे होते हैं तो उन्हें उससे जुड़े खतरों के बारे में बहुत कम पता होता है।
So they're combining drugs like oxycodone or Valium, combining opioids, painkillers and anti-anxiety drugs. In combination, they're very dangerous. If you add in alcohol, you've got a real recipe for overdose. But not only do people not know how to prevent an overdose from happening, they don't know how to respond when it does happen. They don't know how to identify it and respond.
Drug and Alcohol Center, Turning Point के director Matthew Fry कहते हैं कि दवाइयों से साधारण conditions का इलाज होता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब की गई दवाई के बारे में सवाल नहीं करते।
Look, I think there's perhaps a perception that because they're a prescribed drug, they're a drug that comes from a health practitioner, a health professional, a doctor, that because they're a drug that comes from a doctor, that they're not risky, they don't carry risk. But in fact, these drugs, you know, are no different from illicit drugs in many cases. They carry significant risks, and one of those risks is dependence or addiction.
डॉक्टर फ्राई ये भी कहते हैं कि शराब और दूसरी ड्रग्स के साथ जरूरत से ज्यादा दवाई लेना एडिक्शन की निशानी होता है। पूर्व में ड्रग एडिक्ट जैक नेगले अब एडिक्शन ट्रीटमेंट वर्कर के तौर पर काम करते हैं। वे अपनी ड्रग एब्यूज की आदत के बारे में कुछ यूं कहते हैं।
Things like oxycodone and endone are just as addictive as taking heroin, and people unfortunately get hooked and addicted to those medications and continue to take them, and really suffer the consequences of it being quite hard to come off in the long term, as well as dealing with their chronic pain.
भारतीय मूल के लोगों में इन मुद्दों को उठाने और जागरूकता पैदा करने के लिए लगातार कोशिशें की जानी जरूरी हैं। डॉक्टर अमित ज्योतिषी, जो मेलबर्न के एक अस्पताल में साइकियाट्रिस्ट के तौर पर काम करते हैं, वो बताते हैं।
देखिए, हम भारतीय हैं, लोग डॉक्टर पे बहुत भरोसा करते हैं, तो उस पे क्या होता है कि डॉक्टर जो मेडिसिन बोलता है वैसे ही लेते हैं, पर बीच में फिर हम कभी कभी छुप मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं, और जब दर्द वापस आता है या तकलीफ आती है तो उसको फिर से उसी डोज पे स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी में टॉलरेंस डेवलप होता है नॉर्मली, और कुछ देर लेने के बाद हमारी बॉडी को ज्यादा मेडिकेशन की जरूरत होती है, पर हम अगर हम लेना बंद कर देते हैं तो उसके बाद हमारी तकलीफ बढ़ जाती है। तकलीफ कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि हम जब दवाई नहीं लेते हैं तो हमारी टॉलरेंस फिर से कम हो जाती है, पर हम अगर हाई डोज से रिस्टार्ट करते हैं, रिकमेंस करते हैं, तो ओवरडोज होने का चांस हो सकता है।
डॉक्टर साहब, भारतीय समुदाय में एक और चीज देखने को मिलती है, वो है सेल्फ मेडिकेट करने की, कि फलानी चीज हुए, आपके ये दर्द है या ऐसा हुआ है, पैर में मोच आ गई तो ये दवा ले लो, तो वो भी काफी खतरनाक होता है क्या?
बिल्कुल, आप जैसे जानते हैं कि हमारे यहाँ पे फैमिली में ही, फ्रेंड्स में ही एक दूसरे को मेडिकेशन किया, मेरे को ये दवाई ठीक कर गई थी, आप भी ये लीजिए, बहुत कॉमन है. इसमें जैसे पैनाडोल हो गया, अपना ऑक्सीकोडोन हो गया, ऑक्सीकॉन्टिन हो गया, या कोडीन हो गया. इनमें से दो तो कोडीन और पैनाडोल तो ओवर द काउंटर में मिलते हैं. तो ये लोग क्या करते हैं कि आस पड़ोस का देख के कि अच्छा उसने 8 गोली खाई तो मुझे भी 8 गोली खानी चाहिए, ऐसा करके ज्यादा गोली खा सकते हैं. और जो कि ओवरडोज हो सकता है, जैसे देखिए पैनाडोल का लीथल ओवरडोज 22 से 24 मिलीग्राम है, मतलब 30 से 40 टैबलेट अगर आपने खा ली गलती से तो तकलीफ हो जाती है और आप डेंजरस हो सकता है.
इससे बचने के लिए क्या करना जरूरी है डॉक्टर साहब?
देखिए, एक तो हम लोगों की नॉलेज बेस पढ़नी चाहिए हम भारतीयों में, कि दवाई क्या है, किसके लिए ले रहे हैं, कितना डोज है और उसको कैसे लेना चाहिए. और अगर तकलीफ ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर के पास जाएं, ये नहीं कि गोली ज्यादा खाएं. क्योंकि कभी बार ऐसा होता है कि आपने 2 पैनाडोल खाई, दर्द ठीक नहीं हुआ, आधे घंटे में फिर से 2 पैनाडोल खाई, दर्द ठीक नहीं हुआ और पैनाडोल खा ली. तो 8 या 10 पैनाडोल खा ली अगर आपने 3-4 घंटे में, तो उसके कारण भी लीवर पर डैमेज पड़ता है और वो बहुत हानिकारक हो सकता है. तो इसलिए जरूरी है कि अगर चीज ठीक नहीं हो रही है, जैसे खांसी ठीक नहीं हो रही है, पेन ठीक नहीं हो रहा है, दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप डॉक्टर को दिखाएं और खुद इलाज ना करें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एजुकेशन अबाउट मेडिकेशन, कि पैनाडोल जैसे हम खाते हैं उसमें 4 से 6 घंटा देना जरूरी है बीच में. अगर आपने डोज लिया है 1 ग्राम का, उसके बाद 4 से 6 घंटा वेट करिए, उसके बाद ही दूसरी डोज लीजिए. ये तो एजुकेशन, अवेयरनेस एंड गोइंग टू द डॉक्टर, कि डॉक्टर के पास जाना, ये बहुत जरूरी है.
उम्मीद है कि जागरूकता अभियान से ओवरडोज से होने वाली मौतों से बचा जा सकता है. बुधवार 31 अगस्त को इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे है और आप भी अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित कर सकते हैं.